ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹரி ஓம். பூஜ்ய மா கே சரணோ மே, மாதாஜி கே சரணோ மே தன்வத் பிரணாம் கர்த்தே. ईश्वर की दया है और आज से ईशावासी उपनिषद इस विषय पर पूज्य माता जी द्वारा हमें प्रवचन से अनुग्रहित करेंगी और शाम को भी पूज्य माता जी द्वारा प्रवचन होगा. तो प्रातः और सायं माता जी से हम प्रवचन आशीर्वचन सुनेंगे. तो जरूर से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शाम को भी उपस्थित रहें. बाकी जाहिरात माता जी के प्रवचन के बाद होगी. 15 तारीख तक ये प्रातः प्रवचन चलेगा. हरिओम. माता जी को आप सबकी तरफ से वंदन करते हुए
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की. யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்வந்தி ரிப்பேஸ்தவே வேதைஷாங்க பத க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யமஷாமகா த்யானாவஸ்தி தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷாம் தன்ன விதூ சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மை நமஹ. நாராயணம் நமஸ்க்ருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீ சரஸ்வதி வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரி பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்மை வ்யாப்திதேவ்யே நமோ நமஹ. வ்யாப்திதேவ்யே நமோ நமஹ. ஓம் பத்ரம் நோ அபி வாதய மனஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்ரீமன்நாராயண நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன் பஜ்மன்நாராயண நாராயண நாராயண சப் ஜக நாராயண 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 ஜல தல நாராயண 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 தல நாராயண நாராயண பஜ்மன் நாராயண 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 ஆயண ஸ்ரீமன் நாராயண 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 சப் ஜக நாராயண 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 லக்ஷ்மி நாராயண 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 லக்ஷ்மி நாராயண नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण अयण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की अनंत असीम अहेतु की कृपा के साथ हर वर्ष की भांति आप लोगों के साथ बैठकर प्रातःकाल की इस पावन वेला में भगवत चर्चा करूं। ये जो अवसर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, आइए इस पर अब की बार विचार। ऐसे अमरावती में बैठे हुए थे तो मधुबाबू से चर्चा हो रही थी कि उपनिषदों में मुझे ईशावास्य उपनिषद बहुत प्रिय है, तो आपका विचार हुआ कि ईशावास्य पर ही इसकी बात प्रवचन होना चाहिए। बहुत छोटी सी उपनिषद है, बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि कहने के लिए छोटा है, वास्तव में उपनिषद कभी छोटी नहीं होती। वेदांत जिसे कहते हैं, वेद का शिरोभाग वेदांत उपनिषद, और उपनिषदों में भी ईशावास्य उपनिषद एक अपने आप में विशिष्ट महत्व रखती है। विशिष्ट महत्व ये है कि यह यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यद्यपि यजुर्वेद कर्म प्रधान वेद कहा गया है, चारों वेदों में ऋग्वेद को ज्ञान प्रधान और यजुर्वेद को कर्म प्रधान, साम वेद को उपासना प्रधान और अथर्ववेद अर्थ प्रधान कहा गया है, परंतु संपूर्ण वेदों चारों वेदों का तात्पर्य अंततः सबको आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परम परमानंद की प्राप्ति अर्थात स्वस्वरूप की प्राप्ति है। यजुर्वेद के एक कर्म कांड इन मंत्रों का आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने कर्म से इनका तात्पर्य नहीं हो सकता, इनका जो अर्थ किया आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने वह ज्ञान परक किया। इन मंत्रों का ये मंत्र है, सिर्फ 18 मंत्र है, और इन 18 मंत्रों को ही विद्वान लोग गीता की जननी भी मानते हैं। सर्वो उपनिषदो गीता, सब उपनिषदों का सार वो क्या है, बोले गीता है। दुग्धो गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण ने दोहन किया, उपनिषद रूपी गौ है और उस उपनिषद रूपी गौ से दूध का दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, और उसका जो बछड़ा है बोले वो कौन है, अर्जुन है। अर्थात उपनिषदों का जो सार है, दूध से अभिप्राय है सार, वो सार तत्व के रूप में उपनिषदों में जो 12 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन 12 उपनिषद को लेकर के ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, ये तीनों लेकर भगवान भाष्यकार ने प्रस्थान त्रय का जो अध्ययन है, अर्थात गीता, ब्रह्मसूत्र और 12 उपनिषद, इन तीनों को लेकर प्रस्थान त्रय कहा गया है। अर्थात भगवत गीता को उपनिषदों में सम्मिलित किया गया, ब्रह्मसूत्र में अर्थात उपनिषद के समान जो भगवत गीता को आदर प्राप्त हुआ, बोले उसका कारण क्या है? क्या है कि उपनिषदों का जो सार है, उपनिषदों जो उपनिषदें कहती हैं, वही श्रीमद् भगवत गीता कहती है। और मुख्यतः जो ये ईसा उवास्य उपनिषद के 18 मंत्र हैं, उन 18 मंत्रों को ही 18 अध्याय और 700 श्लोक के रूप में, 18 अध्याय के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार किया है। इसलिए ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि ईशावास्य उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता की जननी है। अर्थात जिससे भगवत गीता प्रकट हुई, ऐसी जो उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसका नाम ईशा माने ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतश्च यः ईशावास्येन संबोधितम् ईश्वरम् तम नमाम्यहम्। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने जो ईशिता सर्वभूतानां, ईशिता कहते हैं ईषण करने वाले, शासन करने वाले, जो सर्वभूतों के ऊपर शासन कर रही है, यूं ऐसा समझना चाहिए कि सर्वोपरि परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा, जिसे हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, अर्थात जिसका पारावार नहीं है, वो कैसा है? बोले निर्गुण है, निराकार है, परब्रह्म परमात्मा जिसमें कोई क्रिया नहीं है, निष्क्रियता, अर्थात ऐसा परात्पर लवालब परिपूर्ण तत्व जो सर्वत्र ओतप्रोत है, और उसी परब्रह्म परमात्मा से, उसका सगुण रूप परमात्मा से, निर्गुण निराकार से के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई। पार ब्रह्म परमात्मा से क्या है? बोले वो निर्गुण है, निराकार है। उस निर्गुण निराकार में इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई? ये सृष्टि का खेल खेलने के लिए, एको हम बहुश्यामा, एक से अपने आप को अनेक रूप में होने की इच्छा हुई। तो इस इच्छा के कारण उन्होंने किसका आश्रय ले लिया? माया का। स्वयं से जैसे हम ये कह देते हैं कि देखो आज तो बादलों ने सूर्य को ढक रखा है, यदि ये कह दिया जाए कि बादल ने सूर्य को ढका हुआ है, तो यद्यपि सूर्य का बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकते हैं। बादल और सूर्य अलग, पर कहले में क्या आता है कि बादलों ने सूर्य को ढका हुआ। आज सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे, बादलों में सूर्य छुपे हुए। तो वास्तविकता क्या है कि बादल कभी सूर्य को छुपा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जो निर्गुण है वो कभी निराकार है, वो कभी माया का वशवर्ती नहीं हो सकता। नहीं होने पर भी ऐसा लगता है कि वो उसका वशवर्ती हो गया, स्वयं से स्वयं के माया के वशवर्ती होकर वह निर्गुण तीन रूपों में प्रकट हुआ, जिसे हम कहते हैं ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव है, महेश है। अर्थात उसको उपाधि मिली माया के साथ युक्त होने के कारण, उपाधि प्राप्त हुई, क्या उपाधि प्राप्त हुई, बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये त्रिगुण देव की उपाधि उनको प्राप्त हुई। और इन त्रिगुण देव की उपाधि क्यों प्राप्त हुई, वही माया विशिष्ट जो चेतन है वो ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा इसलिए कहलाए वो उसकी सृष्टि के सृजन करता है, और विष्णु इसलिए कहलाए कि वह सबका रक्षण और पालन करता है, शिव इसलिए कहलाए महेश कि वो सृष्टि का संहार करता है। इन तीनों कार्य को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होगा, ईश्वर। माया विशिष्ट जो चेतन है अर्थात ब्रह्म परमात्मा, जब माया से स्वयं की माया क्या है, केवल उनका अपना एक इच्छा संकल्प हुआ, क्या हुआ कि अपने को सृष्टि के रूप में बहुत अनेक रूप में देखने की इच्छा हो गई, और उस इच्छा के साथ उन्होंने तीन उपाधियां जुड़ गई साथ में, ब्रह्मा विष्णु और महेश, अर्थात इन तीनों उपाधियों से युक्त जो सत्ता है उसे संबोधन क्या मिला, ईश्वर। तो ईश्वर कहते हैं ईषण करने वाले को, अर्थात इसी तरह जिसने अपने वश में किया हुआ है सृष्टि का, सकल सृष्टि को जो वश में किए हुए हैं, सकल सृष्टि में व्याप्त होता हुआ भी सकल सृष्टि के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वह ईश्वर, अर्थात ईशा वाश इदम सर्वम, इसी तरह जिसके वश में सर्वभूतानां समग्र भूत पंचभूत, अर्थात ये सब के सब जिसके आदिनस्थ हैं, ऐसा परिपूर्ण परमात्म तत्व। इसीलिए उपनिषद इसी बात को किसका नाम है, ईशा, ईषण करने वाला, जो सकल सृष्टि की रक्षा करने वाला है, सकल सृष्टि का पालन करने वाला है, और सकल सृष्टि को अपने आप में लय करने वाला है, लीन करने वाला। हम ऐसे शब्दों में कह देते हैं कि सकल सृष्टि, भगवान जगत को उत्पन्न करते हैं और भगवान जगत का पालन करते हैं और भगवान जगत को अपने आप में समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं, लय क्रिया। लय क्रिया जो भगवान की है वो ये जो लय करने का कार्य है, संहर्त, वो संसार का हरण कर लेते, हर्ता जिसे हम कहते हैं, ये भी भगवान की एक लीला है। बोले कैसी लीला है, जैसे एक माँ छोटा सा बच्चा वो अपने स्वभावानुगत स्वभाव के अनुसार दौड़ता है, भागता है, खेलता है, घूमता है, जब वो अपने इन सब कार्यों को करता है तो उसे स्वयं के आराम का बोध नहीं रहता। पुत्र वत्सला माँ देखती है कि अब मेरा बच्चा बहुत देर से खेल रहा है, अब इसको इस खेल से इसे विश्राम मिलना चाहिए, आराम देना चाहिए, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे के खेल खिलौने उससे अलग कर बच्चे को गोद में लेती है, बिठाती है और गोद में थपकी देकर बड़े प्रेम के साथ उसे सुलाने लगती है, उसे आराम देने के लिए, विश्राम देने के लिए उसे अपनी गोद में सुलाती है, सैया पर सुलाती है, उन खेलों को उस बच्चे से हटा देती है, ये माँ करती है। उसी तरह से परमात्मा जब ये देखते हैं कि जीव बहुत लंबे काल से सृष्टि के इस कार्य में पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम, अर्थात संसार चक्र में बहते हुए उसे बहुत समय हो गया है, बहुत समय से ये खेल खेलते हुए क्रीड़ा करते हुए बहुत देर हो गई, अब उनको विश्राम करने की इच्छा होती है, तो वो सकल सृष्टि को आत्यंतिक प्रलय और प्रलय के रूप में जीव को, जीव सृष्टि का संहार कर लेते हैं, उसको सब अपने आप में, वो भी लीला उतनी ही आनंद की है जितनी लीला आनंद के साथ भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, और जितने प्रेम से सृष्टि का पालन किया, रक्षण किया, पालन किया, उसी आनंद के साथ ही भगवान की ये लय क्रिया भी है। अर्थात इन तीनों कार्यों में, सृष्टि के उत्पन्न करने में, सृष्टि की रक्षा और पालन करने में और सकल सृष्टि का संहार करने में, तीनों कार्य ये भगवान के अत्यंत आनंदमय है। आनंद की लीला है भगवान की, स्वयं जिसे वो जो आनंद की लीला करने वाला है, वो उस ईश्वर को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं, ईश्वर की उपाधि देते हैं। जैसे भगवान शब्द से हम उस परम सत्य को एक उपाधि देते हैं कि क्या भगवान कहकर, अर्थात भग नामक जो छह चीजें हैं सट ऐश्वर्य जिसे का भगवान उसे कहते हैं, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो भगवान उसे कहते हैं, जिसके अंदर ये छह चीजें हों, जिसमें ज्ञान की संपूर्णता, वैराग्य की संपूर्णता, धर्म की संपूर्णता, ऐश्वर्य की संपूर्णता, यश की संपूर्णता और श्री की संपूर्णता, ये छह चीजें जिसमें संपूर्ण होती हैं, उसे हम भगवान कहते हैं। और जिसमें ये तीन कार्य होते हैं, सृष्टि के उत्पन्न, रक्षा और लय, हम उसे ईश्वर कह देते हैं। इन तीनों कार्यों से युक्त होने के कारण ईश्वर है, और इन छह ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण वो क्या है, भगवान है। और इन दोनों उपाधियों को, इन उपाधियों को आप हटा दें, ये उपाधि कैसे छोड़ दें, अर्जुन का नाम कौन्तेय भी है और अर्जुन का नाम राधे भी है। राधे कहने पर और कौन्तेय कहने पर अर्जुन के अंदर क्या अंतर आया? कौन्तेय कहो तब भी वो अर्जुन है, राधे कहो तब भी वो अर्जुन है। उसी तरह से प्रब्रह्म परमात्मा को यदि आप भगवान कहते हैं तब क्या अंतर है, और ईश्वर कहते हैं तब क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि वो ईश्वर जो माया विशिष्ट है, माया से युक्त है, भगवान जो सड ऐश्वर्यों से युक्त है, उपाधियां हैं। इन ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म तत्व है, जब तक वो निराकार है तब तक नाम उपाधि से वो परे है। उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई उपाधि नहीं है, वह परम सत्ता निरतिशय व्यापक मात्र हम कह सकते हैं, उसे किसी शब्द के द्वारा बांध नहीं सकते हैं, वो शब्द गम्य नहीं है, शब्द की पहुंच से, शब्द की पकड़ से परे है। और जो शब्द की पकड़ में आता है वो माया विशिष्ट है नारायण, अर्थात जहाँ तक वाणी पहुँच रही है, वाणी जिसे शब्द दे रही है, शब्द के द्वारा जान रही है, वो शब्दातीत भी है और शब्द से युक्त भी है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा ऐसा परिपूर्ण जो तत्व है, उसे क्या कहा गया, ईशावासी। इसीलिए सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद के शांति पाठ में भी यही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः, वह किसके लिए कहा, परब्रह्म जो कर्मातीत है, जो कर्म से परे है संपूर्ण, और जिसमें ये तीन कर्म जोड़ दिए गए, वो तो ईश्वर है। तीन कर्म कौन से, सृष्टि के उत्पन्न करने का और सृष्टि पालन करने का और संहार करने की, ये तीनों क्रिया जिसमें हमने जोड़ दी, तो वो तो ईश्वर है। उससे परे, वह परे माने परब्रह्म, वह क्या है, पूर्ण है। और वही पूर्ण से, उसलिए कहा वो पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। यह हम किसको कह रहे हैं, यह जो माया विशिष्ट है ईश्वर, जिससे संपूर्ण जगत ये उत्पन्न हुआ, वह से और यह, यह और वह दोनों क्या है, पूर्ण है। और पूर्ण से उस पूर्ण से भी, क्योंकि जब दो पूर्ण आपस में मिलते हैं उस पूर्ण से प्रसूत होने वाला, उत्पन्न होने वाला ये जो जगत है ना, ईश्वर से और ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ये जगत है, ये जगत भी क्या है, पूर्ण ही है। ये जगत कैसे अपूर्ण नहीं हो सकता, ये जगत भी पूर्ण है। क्योंकि जो पहले था, वेदांत का ऐसा सिद्धांत है, जो पहले था और बाद में रहता है, बीच में भी वो वही होता है। जैसे उदाहरण दिया कि बोले आम का वृक्ष पहले क्या था, बोले आम था, और उसमें बाद में फल क्या आने वाला है, आम का है। तो बीच में जो वृक्ष है वो वृक्ष क्या कहलाएगा, आम ही तो कहलाएगा, आम से अतिरिक्त तो दूसरा नहीं कहलाएगा। और वैसे विचार करें तो वो है क्या, आम ही है। तो उसी भांति यह जो जगत है, जो उत्पन्न हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, ये सारे का सारा क्या है, बोले ये भी पूर्ण ही है। पूर्णात पूर्ण मुदिच्यते, और प्रलय के काल में, कार्य काल में भी पूर्ण है और प्रलय काल में भी पूर्ण है। कार्य ब्रह्म को लेकर अपने कारण के साथ जब लीन हो जाता है तब भी वह बचता क्या है, बोले बचता केवल पूर्ण ही, पूर्णात पूर्ण वशिष्ठते। शेष क्या बचा, जो कार्य रूप में भी पूर्ण है, कारण रूप में भी पूर्ण है, और वो वाकई उससे जो शेष बचता है तो उसमें भी केवल पूर्ण ही है। तो शांति ब्रह्म परमात्मा, ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, वह परिपूर्ण है। अब ईशावास्य हमें जो समझाती है कि वह पूर्ण है, वह पूर्ण है, और यह जो ईश्वर है वो भी पूर्ण है, उससे उत्पन्न ये जो जगत बीच में हमको दिखाई पड़ रहा है। एक बात याद रखना,